नमो भगवते वासुदेवाय तस्यापि भगवान् तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांशेन चतुर्धागत् पुत्रत्वं प्रार्थित सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया शब्दार्थ तस्य महाराज दशरथ के अपि भी भगवान भगवान एषः वेषभि साक्षात् प्रत्यक्ष ब्रह्ममय परम ब्रह्म या परम सत्य हरि ही भगवान अंश अंशेन पूर्ण अंश के अंश से चतुर्धा चार प्रकार के विस्तार अगात स्वीकार किया पुत्रत्वम पुत्र बनना पार्थितः प्रार्थना किए जाने पर सुरही देवताओं के द्वारा राम भगवान रामचंद्र लक्ष्मण लक्ष्मण भरत भरत शत्रुघ्न तथा शत्रुघ्न इति इस प्रकार संज्ञया विभिन्न नाम से अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंश के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में चारों रूप में व चारों स्वरूप में प्रकट हुए। दोहराइए, देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंश के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में चार स्वरूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेकानेक रूप में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, यद्यपि वे सभी एक ही है किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया 5:39 में ये पुष्टि की गई है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है तथा राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न, और ये रूप उनके सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं, और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों में से एक के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली है। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमांजो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सुखदेव गोस्वामी ये नवम स्कंध के 10वें अध्याय में भगवान रामचंद्र जी के लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं। तुमने इस श्लोक में कारण भी बताया किस लिए भगवान अवतीर्ण हुए, किस लिए अवतीर्ण हुए,
श्लोक अनुवाद आप लोग श्रवण किया, देवताओं ने प्रार्थना करने पर परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। विशेष रूप में संतों को आश्वासन देना मूल कारण है भगवान के अवतारों की। साधु संतों को आश्वासन देना पर परित्राणाय साधुनां, ये मुख्य कारण है। इसलिए देवताओं की प्रार्थना करने पर कहते, देवता लोग भी भगवान के भक्त हैं, तो रावण जब इनको सताया तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान को अवतीर्ण होने के लिए। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलंग लोके मूढ़यंती जुगे जुगे। ये सारे राम आदि मूर्ति से ये सभी भगवान भगवान की भिन्न भिन्न अवतार है, लेकिन स्वयं भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत कहा। और लेकिन ये अन्य अवतार कैसे आते हैं? इंद्रारी व्याकुल, विशेष रूप में देवताओं को जो विशेष कष्ट दुख होता है साधु संत को, और उन्होंने प्रार्थना करते हैं भगवान के अवतीर्ण के लिए, तो भगवान उनकी प्रार्थना को श्रवण करके ही धरा पर अवतीर्ण होते हैं। उसी बात को सुखदेव गोस्वामी भी कहे, देवता लोग ने जो प्रार्थना किया तो भगवान रामचंद्र ने इनकी अन्य भाइयों के साथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक साथ ये धरा पर महाराज दशरथ की पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। क्षत्रियों की दो वंश होता है, सूर्य वंश और दूसरा चंद्र वंश। सूर्य वंश इसलिए धन्य है क्योंकि इस वंश में भगवान रामचंद्र जी ने उनके अन्य भाइयों के साथ में इस धरा पर अवतीर्ण हुए थे, इसलिए सूर्य वंश रामचंद्र जी को ही जैसे राजा के रूप में प्राप्त करके धन्य हुआ। और चंद्रवंश किस लिए धन्य है? चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए। ऐसे ही वस्तु तो विष्णु तत्व में कोई अंतर नहीं देखा जाता, सब समान, विष्णु तत्व में भेद नहीं दिखाया जाता है ऐसा ही। लेकिन फिर भी अशेष ब्रह्म बा बिरजा के दूसरे पर में जो आध्यात्मिक जगत है उसमें अशेष वैकुंठ लोक की परे भी ऊर्ध्व में कौन सा धाम है? भगवान रामचंद्र जी की धाम, इसको कहते हैं साकेत धाम, साकेत बा अयोध्या, तो उसके परे भी गोलोक वृंदावन। लेकिन आप जो डायग्राम देखोगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के, भगवान रामचंद्र जी के धाम भी गोलोक के अंदर ही आता है, गोलोक वृंदावन गोलोक धाम के अंदर में ही रामचंद्र के धाम आता है, अयोध्या भी वहीं आता है। लेकिन रामचंद्र जी कैसे अवतीर्ण हुए उसकी विशेष वर्णन आज उसी तो उनकी कुछ लीला, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जगति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। जो भगवान की जन्म कर्म ये दिव्य लीलाओं को श्रवण करता है, तत्व से जो इसको समझ लेता है, तो फिर ये भौतिक संसार में बार बार जन्म नहीं लेता है, तो इसलिए उनको सुनना जरूरी है। विशेष रूप से सुखदेव को समय वरदान देते हैं राम कथा को कहकर, कहते कि पुरुष रामचरितं श्रवणैरुपधारयन् अनु संशय परहो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंतद्गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा। कौन सा रोग से मुक्त हो जाएगा? हाँ, जिसको कोई रोग और दूसरे उपाय नहीं है इसको हटाने के लिए, हम सभी को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं लेकिन इसको नहीं लगा सकते ईर्ष्या। लेकिन सुखदेव गोस्वामी वरदान देते कि यदि कोई राम कथा को बड़े सावधानी से सुनेगा तो ये जो बीमारी है ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर्मबंधन से छूट जाएगा, अर्थात भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लेगा। इसलिए सावधानी से सुनो, इसलिए फलश्रुति पहले कहते ना कोई भी कथा का, क्योंकि लोगों को थोड़ा उत्साह बढ़ता है। तो राम कथा को जो सुनोगे, सुखदेव को सबने वरदान दिया कि आपको ईर्ष्या की जो बीमारी है ये नष्ट होगा, दूसरों को ईर्ष्या करने का जो बीमारी है। तो क्षत्रिय की दो वंश होता है, इनके वंश परंपरा में सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से कहते कि महाराज खट्टांगों की खट्टांग कहरा कथा आप दूसरे स्कंद में सुने हैं, महान भक्त थे महाराज खट्टांग के पुत्र थे दीर्घवाऊ, दीर्घवाऊ के पुत्र रहे रघु, रघु के पुत्र रहे अज, अज के पुत्र थे महाराज दशरथ। दशरथ को महाराज दशरथ के एक कन्या थी, उसके नाम था, नाम थी क्या, शांता, जिसको उन्होंने महाराज रोमपाद को दे दिए थे। बाद में ऋषि सिंह मुनि के साथ शांता की प्रेरणा हुआ, लेकिन महाराज ऋषि सिंह बहुत महान ऋषि थे, तो बड़ा कहानी है कैसे वो शांता को प्रेरणा हुआ उनके साथ। लेकिन ऋषि सिंह मुनि को आमंत्रण करके जैसे महाराज दशरथ एक पुत्र की पुत्रेष्ठी यज्ञ, एक पुत्र प्राप्त की इच्छा रखते हुए यज्ञ करते गए। तो उस यज्ञ की जब पूर्ण आहुति हुआ तो उसमें से कुछ विशेष चरु इन्होंने निर्माण किया, कौन, ऋषि सिंह मुनि ने। अरे महाराज दशरथ को कहे, देखिए दशरथ की कितने रानी थे, तीन रानी थे, कौशल्या, कौकेयी और सुमित्रा, तीन रानी थे। तो राजा ने वो चोरू जो थे इसको तीनों रानी को खाने के लिए दिए। यज्ञ के अंत में जो विशेष कुछ यज्ञ उचिष्ट के रूप में प्रस्तुत करके ही जो ऋषि सिंह मुनि ने कहे कि अपने रानियों को इनको खाने के लिए दो, तो तीन भाग पर नहीं तो तीन भाग कर दिए करके कौशल्या भाग लिए और एक भाग कैकेयी और एक भाग सुमित्रा। लेकिन सुमित्रा के प्रति ज्यादा स्नेह होने के कारण अने पहले दोनों लिए अपने कौशल्या कही के, फिर बाद में दोनों रानी अपने भाग से आधा आधा करके फिर दे दिए इसको, किसको, सुमित्रा को। तो सुमित्रा डबल मिल गया, इसलिए दो पुत्र हुए सुमित्रा के और इनके एक एक पुत्र हुए। जब ठीक समय पर ये गर्भवती होकर फिर ये चारों पुत्रों को जन्म दिए। रामचंद्र जी किसके पुत्र हैं, कौशल्यानंदन, कौशल्या के पुत्र, और कैकेयी के पुत्र कौन, भरत, और सुमित्रा से दो पुत्र हुए लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न, ये दोनों सुमित्रा के पुत्र हैं। तो इस प्रकार चारों पुत्र जन्म लिए। प्रभुपाद ने जैसे तात्पर्य कहते कि चारों को चारों विष्णु तत्व थे, ये जीव तत्व में नहीं थे, चारों को चारों विष्णु तत्व हैं। रूप गोस्वामी अपने लघु भागवतामृत के टिप्पणी में वो लिखते हैं कि चारों जो है ये प्रकृति में चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे रूप गोस्वामी कैसे मत है। वासुदेव है रामचंद्र, संकर्षण है लक्ष्मण और प्रद्युम्न अनिरुद्ध है दोनों कौन, भरत और शत्रुघ्न। इस प्रकार रूप गोस्वामी कहते कि चतुर्व्यूह ही है ये उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहे कि देखो परीक्षित, आप इस राम कथा को बार बार पहले बहुत बार सुन चुके हो, तो इसलिए मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, खाली ब्रीफली, आप सब जानते हो इसलिए ब्रीफली बताता हूँ। इसी प्रकार आप भी सब रामायण के बारे में सब जानते हो इसलिए आपको भी हम ब्रीफली बताएंगे, तो प्राय जानते सब रामायण की कहानी है राम। तो ये रामायण की कथा तो मैंने तृतीया में भगवान रामचंद्र जी ने अवतीर्ण हुए थे। जैसे ही रामायण के आधार पर जो स्वयं गोलोकाधिपति बाजेश्वरी जो साकेत अधिपति अयोध्याधिपति जो रामचंद्र, ये हर कलयुग में अवतीर्ण नहीं होते हैं। जैसा ही जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी हर कली में नहीं आते हैं, केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही अवतीर्ण होते हैं, उसी प्रकार स्वयं जो साकेत धाम में रहने वाले रामचंद्र वो भी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं और हर त्रेता में युगावतार आते हैं युग धर्म को प्रवर्तन करने के लिए, लेकिन स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में भी एक बार आते हैं। तो इसलिए त्रेता जो पहले आ गए थे भगवान श्री कृष्ण को आने अवतीर्ण होने के पहले, द्वापर के पहले त्रेता आ गए थे, इस युग चक्र में पहले त्रेता आया था, तो इसलिए त्रेता युग में रामचंद्र की लड़ा शुरू हुआ था, इसलिए द्वापर युग के जो मनुष्य बाद में आए तो वो रामचंद्र की वो गुणों को गाते रहते थे, यहाँ तक कि माँ यशोदा ने भी सुनाती थी रामायण की कथा कैन को, कृष्ण को, भगवान को एक माँ ने सुला रही थी, एक बार सोजा कन्हैया सोजा मैं कहानी कह रहा हूँ। तो रामचंद्र जी ने कहे कि दशरथ की एक राजा थे, दशरथ थे, उनके चार पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। रामचंद्र जी की शादी किससे हुआ, सीता जी से हुआ, जनक नंदिनी सीता से हुआ, और लेकिन कैकेयी की कुमंत्रणा से, और दशरथ ने इनको वनवास दे दिया, किनको? रामचंद्र जी को जंगल में भेज दिया। रामचंद्र सीता जी के साथ अपने और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में जो जा रहे थे, और रावण का बहन सुपर्णखा के नाक सुपर्ण, क्योंकि वो काम वासना के विशेष प्रभावित होकर रामचंद्र जी के पास आया। रामचंद्र जी लक्ष्मण के पास में कुछ लेटर लिए तो लक्ष्मण जी ने नाक कान काट के छोड़ दिया। तो बलराम बाजू में सोए थे, हंसने लगे, तो कहे कि अच्छा, लेकिन जब कहे कि लेकिन इसके बाद रावण ने आया, क्या लेकर? रावण ने आकर सीता को हरण कर लिया, मरीचा पहले मारीची को छोड़ा, हिरण को प्रति लागा, सीता जी आसक्त हो गए। और जो मैंने रावण जी ने रामचंद्र जी जो मारीची के पीछे गए हिरण को पकड़ने के लिए, और उन्होंने लक्ष्मण का नाम लिया, सीता कहने पर लक्ष्मण चले गए, सीता जी एकांत में रही तो आए कौन? रावण आकर छद्मवेश में सीता को हरण कर लिया। इतना कहते कि भवा वो कन्हैया जग गए हैं, लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष और बाण है। अरे बोले क्या हो गया? माँ तो उसका चमक गई, क्या हो गया है? क्या हो गया? अरे क्या हो गया कन्हैया, सो जा लक्ष्मण देखे। और बलराम भी उठ के खड़ा देखने लगे, क्या हो गया? राम लक्ष्मण बोले लाओ धनुष लाओ, देखता हूँ रावण को। तो इसलिए ये रामायण की कथा माँ यशोदा भी सुनाती थी, किनको? कन्हैया को सुनाती थी द्वापर में। तो इसलिए परीक्षा सुखदेव गोस्वामी कहते कि आप बार बार इसको सुन चुके हैं परीक्षित महाराज, तो आप बहुत सुने हो राम कथा, इसलिए उसको संक्षेप में ब्रीफली कहकर फिर आगे कृष्ण कथा को विस्तार में कहूँगा। तो एक बार काम्य वन में सब मैंने घूम रहे थे, सब मैंने भगवान श्री कृष्ण थे सखियों के साथ में, ललिता आदि सखी सब थे, ललिता विशाखा राधारानी भी थी, सब लोग थे बैठे थे। और हठात ललिता जी ने रामायण की कथा कहने लगे, वहाँ देखा बंदर लोग में सब खेल रहे इधर उधर, बंदर लोग से इधर जंपिंग कर रहे एक पेड़ से दूसरे जंपिंग करके। ललिता जी ने कहे कि देखो ये बंदरों को देखकर मुझे भगवान रामचंद्र जी की याद आता है, त्रेता जी में भगवान राम थे और इन्होंने इतनी प्रतापशाली इतनी शक्तिशाली थे कि तो समुद्र के ऊपर भी क्या बनाए थे, बंद बनाए थे रामेश्वर में। उन्होंने समुद्र के पास गया, समुद्र जब उनकी बात नहीं सुना तो क्रोधित होकर जो समुद्र को देखे उसमें रहने वाले जलचर जीव सब भय से कंपने लगे, और समुद्र स्वयं के साक्षात आकर भगवान रामचंद्र जी के चरण में वंदना की, और उनके भगवान रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर विशेष बंध बनाए जो कि आज भी रामेश्वरम में सेतु बंध के नाम से प्रसिद्ध। ऐसे जो कह रही थी ललिता, तो आप कृष्ण कहने लगे कि ललिता मैं वही कृष्ण हूं, मैं वही राम हूं, मैं वही रघुनंदन राम हूं। ललिता कह कि आपको शर्म भी नहीं है, आप गाय चराने वाले हो, गाय चराते हो, कि रघुनंदन का वो तो क्षेत्रीय राजाधिराज थे है? और वो कितने प्रसिद्ध रामचंद्र की लीला को सभी जानते हैं, वो स्वयं भगवान थे। और आप यहाँ पर ये गाय चराने वाले हो और यही ब्रज में घूम गोपियों के साथ में घूमने वाले हैं। रामचंद्र तो एक पत्नी व्रत थे, उनकी सिर्फ एक ही पत्नी था सीता। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कभी अपने वचन को लंघते नहीं थे, प्राण जाए पछे वचन न जाए, रघुकुल अदिति सदा, लोग कहते ना। तो इसलिए आप अपने कैसे कह रहे हो, बड़ा बहुत कुछ बहुत हो गया है, आप रामचंद्र बन गए हैं। बोले अरे गोपियां तुम मूर्ख हो, तुम समझते नहीं मैं हूँ वही राम हूँ मैं। बोले ऐसा नहीं चलेगा, आप ऐसे बल्द में थोड़ी हो जाता है। रामचंद्र पर सेतु समुद्र के ऊपर पर इतना बड़ा विशाल बंध बनाया है बंदरों की सहायता से, तो आप यदि ललिता जी कहेंगे देखो हमारे सामने ये जो तालाब इतना बड़ा ये तालाब है कुंड है उसके ऊपर एक बंध बना के दिखाओ, इसे बंदरों के माध्यम से एक बंध यदि बना के दिखा दोगे अभी है। वह रामचंद्र जी के आदेश से बंदर से पत्थर ला ला के समुद्र में डालते थे, पत्थर भासता था भगवान के राम नाम लिखने से। और आप देखिए एक यही से आपका प्रमाणित होगा एक तलाव भगवान रामचंद्र के, ठीक है आप लोग जाओ उसे पत्थर लेके आओ मैं बनाता हूँ। बोले हम क्यों लाएंगे भाई, रामचंद्र जी का आदेश सुनकर कौन लाया था, बंदर लेकर आए थे राम, ये बंदर से घूम रहे आप इनको लगाओ। तो भगवान ने कहा कि सही बात हो ठीक है, तो भगवान ने बंदरों को इशारा दिया, बंदरों को तो बंदर से आ गए सतगुरु सब सब पत्थर लेकर आने लगे, और पत्थर डाले पड़े तो पत्थर डूब गया। बोला अरे ये देखो देखो तुम्हारा, तो भगवान ने फिर भी बंदरों को कहा कि ठीक है इसका पर लिखो क्या, कृष्ण लिखो। तो पत्थर लेकर फिर डाल देता, पत्थर ही भाषने लगा। बोले तो देखो मैं हूं कि नहीं, और राम लिखा था, राम लिखने से पत्थर भाषा था, इधर मैं ही वही राम हूं, इसलिए मेरा नाम भी कृष्ण वी हुआ, लिख दिया तो भाष रहा है। पत्थर डाल के ब्रिज बना दिए, कौन कृष्ण। कृष्ण बोले बोले देखो मैं हूं कि नहीं वही राम। लेकिन फिर भी गोपिया कहे कि ऐसे नहीं चलेगा, हमको जान रहा है, लग रहा है कि कुछ जादू तो जानते हो, कुछ क्या मंत्र तंत्र कुछ तांत्रिक विद्या की बल में ये कर दिया, बस ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा ही भगवान रामचंद्र जी ने भी नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी अपने को राम के रूप में गोपियों के साथ सामने, माँ जसोदा के सामने है, कभी कभी से लड़ा में बताते थे कि मैं ही वही राम हूँ। जयदेव को समय कहते कि ऐसा वधरीता राम शरीर, ये राम शरीर कहाँ से आया भगवान रामचंद्र जी का अवतार, वही कैसा भगवान श्री कृष्ण ही ये अवतार, आपने को विस्तार करके ये अवतार के रूप में अंशांशेन, जैसे सुखदेव को समझे अंश अंशेन भगवान चतुर्थ चार मूर्ति रूप में जब अवतरित हुए हैं, दशरथ के पुत्र के रूप में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न थे चारों पुत्रों को प्राप्त करके, तीनों रानी में से इनमें, लेकिन आस्ते आस्ते बच्चों बढ़ने लगे, नाम संस्कार हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम, तीन पुरुषोत्तम हम जानते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम है, और गौरांग महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है, इतनों में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए ये मर्यादा उल्लंघन नहीं कि बचपन से राजा के घर में राजपुत्र के रूप में इनकी बढ़ोतरी हुई। कृष्ण की बढ़ोतरी कैसे हुई, ग्वाला के रूप में नंद भवन में, लेकिन ये तो राजपुत्र के रूप में, महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में बड़े ताटपाट में संभ्रांत परिवार में इनके सब बढ़ोतरी हुआ। और लेकिन जो छोटे आस्ते आस्ते धनुष विद्या सीखने लगे, बड़े हो गए क्षत्रिय थे राजपुत्र थे, इसलिए उन्हें उस समय धनुष विद्या सीख रहे थे, और छोटे तो उस समय विश्वामित्र ने यज्ञ कर रहे थे कहाँ जंगल में, विश्वामित्र बड़े जोगी थे, और जगत के कल्याण के लिए कुछ यज्ञ आदि करते थे, लेकिन वहाँ पर मारिच और कई राक्षस राक्षस थे, उसको यज्ञ करने नहीं दे रहे थे। आप सब रामायण देखे होंगे, टीवी में भी है तो थोड़ा थोड़ा कभी गलत गलत रामायण से इधर उधर अपना हमारा स्पेकुलेशन है, लेकिन प्राय सेम। इसलिए राक्षस उनके द्वारा बड़ा प्रताड़ित माने इनके द्वारा विक्षेपित होकर विश्वामित्र ने सोचा कि राक्षस को तो ब्राह्मण ही नष्ट कर सकते, अभिशाप देके समाप्त कर सकते, लेकिन उसने सोचा कि ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है, ब्राह्मण को सहन करना चाहिए, सम दम तपस्व क्षेत्रीय राजा की कर्तव्य है इनको सब नष्ट करना। इसलिए विश्वामित्र ने आए महाराज दशरथ के पास में आकर कहे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। क्या मांगने आए, तो आपकी जो दो पुत्र है मुझे दे दो, राम और लक्ष्मण, परमानेंट नहीं, अब कुछ समय के लिए इनको दे दो, मैं इनको लेके जा रहा हूँ और इनके द्वारा कुछ काम होने होने वाला है, इसके बाद फिर आपको वापस कर दूंगा थोड़ा दिन बाद, और इनको मैं भी कुछ युद्ध विद्या सिखा दूंगा। कौन कहा, विश्वामित्र ने बहुत बड़े योद्धा थे, पहले क्षत्रिय थे, तो कहीं मैं इनसे युद्ध विद्या भी सिखाऊंगा और इनकी कल्याण साधन करके फिर थोड़े दिन बाद आपको वापस कराऊ। लेकिन वज्रपात हुआ इनके सिर में, किसके सिर में, दशरथ का, कि ये कैसे संभव है, राम लक्ष्मण दोनों को लेके जाओगे, ये तो मूर्छित हो गए। लेकिन ब्राह्मण को वचन दिए तो अभिशाप से, विश्वामित्र अभिशाप देगा कहीं ब्राह्मण कुछ मेरे पुत्रों का ही हानि होगा, सोचकर फिर राजी हो गए। विश्वामित्र दोनों को लेकर गए और ये सब राक्षस यज्ञ स्थल में जो उत्पाद कर रहे थे मारी चारी से राक्षसों को वध किए, राम और लक्ष्मण इनको वध कर दिए। वध करने के उपरांत उनको पता लगा कि ये स्वयंवर चल रहा है कहाँ, महाराज जनक के मिथिला राज, मिथिला में जनकपुरी में वहाँ पर सीता के स्वयंवर की आयोजन हो रहा है, पूरा दुनिया से सभी राजकुमार पधार रहे हैं वहाँ पर स्वयंवर सभा में, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति था राजाओं की जो कन्या होती तो कन्या अपने स्वेच्छा से वर चुनती थी, जो अपने पति को चुनकर वरणमाला पहनाती थी। तो विश्वामित्र ने भी दोनों भाई के दोनों को लेकर पहुँचे उधर, लेकिन महाराज जनक बड़े विश्वामित्र को बहुत स्वागत किए और उनके साथ में दोनों राजकुमार को देखकर पूछे कि कौन है इनका जो परिचय दिए, तो विभो प्रसन्न होते उनके रूप और गुण को देखकर वो सोचते थे कि ये दोनों यदि ये दोनों में से कोई यदि सीता के विशेष रूप में राम को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, मन में भी इसे भावना रखे थे कि यही यदि मेरे जामाता बन जाएगा तो बहुत सबसे श्रेष्ठ होगा। लेकिन शर्त था, स्वयंवर में क्या शर्त था, किसका धनुष था, शंकर जी का शिव धनु। संकल्प था कि यदि कोई शिव धनु को तोड़ सकता है व इसमें क्या लगाकर तीर लगाकर इसको यदि क्या कहते हैं इसको धनुष में टंकार दे सकता, माने चला सकता धनुष, और धनुष कितने उच्च में अन्य कितना था, भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते कि यहाँ पर 300 लोग इसको उठाने के लिए, केवल जमीन से उठाने के लिए धनुष को कितने लोग लगते थे, 300 लोगों की जरूरत पड़ता था खाली उठाने के लिए, कितना बड़ा कितना विशाल धनुष होगा। तो उस धनुष रखा गया था, कहते कि ये धनुष में जो अपने उसका प्रत्यंचा को जोड़कर जो इसमें तीर चला पाएगा तो वो सीता को स्वयंवर करेगा। ये सीता भी कोई साधारण कन्या नहीं थी, उनका भी जन्म ऐसा ही किसी माँ की गर्भ से नहीं हुए थे, वो भी ऐसा है मैंने जनक महाराज जनक राजर्षि जनक जब खेत में ऐसे ही सोने के लंगल में खेत चस रहे थे वैसे ही उनको बक्स के अंदर में प्राप्त किए थे सीता जी को। तो इसलिए जैसे ही रामचंद्र जी के गुण सब था, गुण रूप सब कुछ था, इसी प्रकार रूप और गुण में वो भी सुजग्या कन्या थी, कौन सीता देवी। तो इसलिए सब राजा तो स्वयंवर सभा हुआ, विश्वामित्र भी दोनों को ले भाई को लेकर गए देखने के लिए स्वयंवर सभा कैसे चल रहा, और सभी जो थे राजकुमार आते थे कोई धनुष धनुष को टच कर उठाने उठा भी नहीं पा रहे थे हैं? और कई ऐसे ही होकर फिर अंत में सब हार गए और बहुत आसान से रामचंद्र जाकर धनुष को उठाए, प्रत्यंचा जोड़कर इसमें जब तीर चलाने लगे जोर से प्रत्यंचा तोड़े तो नहीं के तो पूरा धनुष भी बीच में तोड़ गया, इतना शक्ति था। ये देखकर धनुष को तोड़ दिया बीच में हैं, लेकिन महाराज जनक तो बड़ा प्रसन्न हुए, सीता के जा साथ राम जिनके उसको निमंत्रण भेजे किसको, दशरथ महाराज दशरथ आए, उनके दो दूसरे पुत्र भी थे उनको लेकर आए, भरत लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो अभी फिर वहीं स्वयंवर हुआ, केवल रामचंद्र जी के नहीं चारों पुत्रों की स्वयंवर हो गया, सब अन्य सब उनके कन्या थे, विशेष रूप में रामचंद्र जी की सीता की सीता के साथ स्वयंवर हो गया। और स्वयंवर कर जब वापस आ रहे थे तो एक व्यक्ति आ गया सामने, क्योंकि तुम बड़ा अहंकारी है, शंकर जी का धनुष को तोड़ दिया ये आए, कौन आ गया सामने, परशुराम, कहे कि शंकर जी के धनुष को तोड़ा, ये इतनी अहंकारी है, कौन है ये, जानता नहीं मैं कौन हूँ, हैं कि वो शिवम शिव जी की वो भी पूजा करते थे, कौन परशुराम, सत्यावेश अवतार थे, सत्यावेश अवतार के सुखद कोई जीवात्मा है और इसको भगवान विष्णु से विशेष शक्ति प्राप्त होता था कुछ विशेष कार्य करने के लिए, लेकिन वो विष्णु तत्व में नहीं होते हैं, जीव तत्व में है, लेकिन इनको विष्णु की शक्ति मिलता है, शक्त्यावेश अवतार कहते हैं, ये शक्त्यावेश अवतार थे और पूरे विश्व को कितनी बार निखेत्र किए थे, 21 बार क्षत्रियों को वध कर चुके थे विश्व में, जो ऐसे क्षत्रिय नाम के थे लेकिन जो सब अत्याचार करते थे, संसार उत्पात करते थे, तो उनसे वध किए थे। अभी बोले कि ये कौन आ गया क्षत्रिय, अभी शंकर जी के धनुष को तोड़ा, बड़े हूंकार जत्र महाराज दशरथ थोड़ा डर गए, कार क्या होगा मेरा छोटे ये बालक पुत्र, हाथ जोड़ के प्रार्थना किए आप कृपा कीजिए इनके प्रति क्रोध, लेकिन वह तो और शांति होने वाले नहीं थे। लक्ष्मण जी ने भी उनको कुछ मैंने तो पहले अंत में रामचंद्र जी ने बहुत आसान से वो उनके पास में और एक दूसरे धनुष था, किनके पास, परशुराम के थार में विष्णु की धनुष था, भगवान विष्णु की धनुष था, अरे चलो वो धनुष को तो तुमने प्रत्यंचा जोड़ दिया, ये धनुष को यदि तुम प्रत्यंचा जोड़ के यदि तीर चला पाओगे तभी तुम बचोगे, नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, भगवान विष्णु ही थे तो विष्णु का धनुष बहुत आसान से उसमें प्रत्यंचा जोड़े बाण, तभी तो कहे कि बोलो अभी मैं प्रत्यंचा जोड़कर तो तीर लगा लिया, अभी तीर छोड़ूंगा कहाँ, जब क्षेत्रीय तीर को लगा लिया तो कहीं ना कहीं जाएगा, कहाँ छोड़ूंगा, बोलो अभी तुम क्यों तुम्हारी पर छोड़ू तो बेचारा परेशान हो गया, डर गया, क्यों तो समझ गया कि यह स्वयं भगवान विष्णु है, तुरंत ही परशुराम सरेंडर किए हैं, लेकिन भगवान उनके उनके सारा शक्ति हरण करिए हैं, तो उनको भेज दिए, बोले जाओ महेंद्र पर्वत में बैठ के भी तपस्या करो, तुम्हारा और वो शक्ति का कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान ने पर पधारे आकर अयोध्या में चारों भाई अपने सीताजी के साथ, अन्य अन्य भाई भी अपने अपने पत्नियों के साथ, लक्ष्मण की पत्नी थी कौन, शर्मिष्ठा, ऐसे सब आए। लेकिन अभी रामचंद्र जी शादी भी हो गया, दशरथ ने देखी कि मैं वृद्ध अवस्था हो गया, मैं अभी बड़े पुत्र को सिंहासन पर बैठाऊंगा, राजा सम्राट बनाकर मैं वानप्रस्थ लेकर जाऊंगा भक्ति में, आगे भक्ति का अभ्यास करने के लिए। लेकिन एक दासी थी, क्या नाम थी उसकी, मंथरा, बड़ा कपटी थी, कुटृति करने वाली थी बहुत, कैके के मन में ऐसे कुछ मैंने भावना दुर्भावना नहीं थे, लेकिन कैके के पास में पहुंच गई, जब देखा कि रामचंद्र जी का अभिषेक हो रहा है, होने वाला है, डेट फिक्स हो गया, रामचंद्र राजा बनेंगे, सीता जी महारानी बनेगी और सब कुछ होगा, ऐसे कुछ है, तो उसकी पीठ में भी कुबड़ी थी, किसका ऐसा कुबड़ी है, जैसे कुबड़ी था तो इसके अंदर में भी सारे कपट भरा हुआ था। जा जा कि पहुंचा कैके के पास में, पहले दशरथ महाराज दशरथ ने कैके को एक बार वचन दिए थे कि एक बार देने के लिए वचन दिया था, एक बार युद्ध में ऐसा ही, जब वो किसी युद्ध में विशेष रूप में क्षेत्र क्षेत्र में उनके अंगूठे कहीं कट गया था, तो उनको विशेष रूप में ट्रीटमेंट की थी कौन, कैके बैठ कर उनकी बहुत सेवा की थी। दशरथ ने बड़े प्रसन्न होकर थे, कैके तुमको कुछ मांगो मुझे, मैं तुमको जो मांगोगे देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे सेवा में बड़े ही प्रसन्न हूँ। कैके ने कही थी कि मैं अभी नहीं मांगूंगा, अभी तो कुछ मुझे जरूरत नहीं, समय आने पर मांगूंगा, अरे मंथरा जाकर याद दिलाए, हैं कैके को याद दिलाए कि देखो तुमको ये राजा ने भले भूल गए, तुमको वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे एक बार देंगे, हैं अभी समय आ गया, अरे तुम जब तुम्हारे पुत्र यदि राजा नहीं बनेगा, उसमें भरत नहीं थे, अपने मामा के घर में गए थे, तो तुम्हारे पुत्र यदि राजा नहीं बनेगा तुम्हारा क्या वैल्यू होगा। कैके ने वो समझाया, बोला अरे राम और भरत में क्या फर्क है, मैं भी राम भी मुझे माँ जैसे मानती है, अरे अरे ऐसा नहीं होता है, लड़का के जो लड़का होता है उसका माँ जो वही राजमाता होता है, तुम्हें कौन सा राजमाता है, कैके ही राजमाता बनी है, रामचंद्र राजा बनेगा, ऐसा बहुत कुछ ऐसा मैंने मंत्रणा देते रहा, और उसके द्रात भर इसके मत की बिगाड़ दी, किसके कैके, बोले भरत ही राजा बने, इतना ही नहीं तुम जानते ना, सब देखोगे जब भरत राजा बन जाएगा ना, फिर रामचंद्र जी ने थोड़ा तो रहेगा, लेकिन कभी फिर सैन्य ला के इसको भगाएगा फिर यहाँ से, रामचंद्र जी की शक्ति ज़्यादा है, ज़्यादा लोग उसका फॉलोअर है, इसलिए भरत को सिंहासन पर बैठा कर इसको भेज देना, कहा जंगल में, राज्य से भाग जाएगा, जो 14 साल बाहर रहे, तुम्हें से वरदान मांगो, है मंथरा की तरह विशेष प्रभावित होकर फिर कैके ने गए दशरथ के पास में, अपने भवन में खाना पीना छोड़ के बैठा, दशरथ है क्या हुआ, खबर मिल गया कि कैके कुछ कारण से अभिमानिनी हो गई है, खाना पीना छोड़कर ऐसे जमीन पर सोई हुई है, तो कहे कि राजा आपने मुझे वचन दिया था कुछ मुझे देने के लिए, याद है, दशरथ कहे कि हाँ, तो रघुकुल की रीति है, हम कोई वचन नहीं टालते, बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए, तो बोले कि मुझे ही चाहिए, मेरे पुत्र भरत अयोध्या के सिंहासन में ऊपर बैठेगा, हैं अयोध्या के राजमुकुट भरत ही पहनेगा। सुनते ही दशरथ महाराज चकित हो गए, क्या मांग रहे, इसका मत ऐसे कैसे बिगड़ गए, इतना ही नहीं, रामचंद्र 14 साल वनवास जाएगा, हैं? तो इसको सुनकर तो महाराज वहीं मूर्छित होकर दशरथ गिर पड़े हैं, बहुत मुश्किल से इनको पानी फानी से उनको उठाए, लेकिन जब पता चला इस बात की पिताजी ने इसे वचन दे चुके हैं, किसको, कैके को, रामचंद्र जी ने वॉलंटियर ली, राज्य त्यागने के लिए तैयार हो गए, अपने आप राज जो अभिषेक उस दिन हो राजाभिषेक होना था, लेकिन उन्होंने अपने राज हम सब के भरत भी नहीं थे उस समय, एक और सो छोड़ के राजमुकुट राज अलंकार भेष जो साधारण वन में जाने वाले जति की तरह समान अपने को सजा ली, तो फिर उनके छोटे भाई थे कौन, लक्ष्मण जी कहे कि सुमित्रा के पुत्र कहे कि मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपके संग छोड़ नहीं सकता हूँ, हम दोनों सब समय साथ में ही, जहाँ भी खाना पीना बैठना सब कुछ साथ में, मैं आपकी विच्छेद में नहीं रह सकता हूँ अयोध्या में, मैं आपके साथ चलूँगा, लक्ष्मण के अनुनय करने पर भगवान स्वीकार कर ली। राम लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो गए तो कौन आ गए फिर? सीताजी। सीताजी कहे कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, पति की एला मेरा कोई दूसरे गति नहीं, जहाँ आप जाओगे मैं आपके साथ रहूँगी। रामचंद्र जी ने कहे कि ऐसा नहीं कि हाँ शास्त्र में स्त्रियों को हैं जंगल में जाना, 14 साल यहाँ बिता दो हम वापस आ जाएंगे। कहने पर वो मानी नहीं कौन सीता, तो अंत में वो भी तैयार हो गई जाने के लिए। और इसलिए राम लक्ष्मण सीता वनवास में आगे निकले। टाइम कितना हो गया बोले तो क्या डिटेल और बोलेंगे वो संक्षेप बने भी। तो रामचंद्र बस से आगे जाते हुए फिर नदी पार करने के लिए गए, वो आ गया कौन सा केवट आ गया है? केवट के बारे में सुने कैसे वो नदी को पार किया तो क्या चाहता था, वो भगवान के चरण को धोना चाहता था, भगवान के चरण को धोया। और केवट ने अपने जीवन को धन्य किया, भगवान के भगवान को नाव में बैठा कर पार किया है। इस पर भगवान फिर कई जंगल, एक जंगल से दूसरे जंगल ऐसे घूमते रहे। चित्रकूट विशेष प्रसिद्ध है, जहाँ पर भगवान ने विशेष रूप में वहाँ रहे थे कुछ दिन, कई दिनों तक वहाँ पर निवास किए। भ्रमण करते करते अन्य अन्य जंगल जाकर पंचवटी पहुँचे। कहाँ पहुँचे? पंचवटी। पंचवटी कहाँ पर है? नासिक। वहाँ पर लक्ष्मण रेखा आदि सब है ना, वहाँ जाओगे सो देखा जाते लक्ष्मण। तो पंचवटी में जब पहुँचे तो भगवान रामचंद्र जी वहाँ विश्राम कर रहे थे अपने बस भाई, और से बड़े सुंदर मनोहर परिवेश था जंगल के, वहाँ रहते थे। तो रावण की बहन कौन सुपर्णरेखा घूम रही थी, और रामचंद्र जी को सौंदर्य को देखकर तो उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए इच्छा प्रकट की। और जब रामचंद्र जी के पास में राक्षस जो होते थे किसी प्रकार के रूप को बदल सकते हैं है ना, सुपर्णरेखा अपने रूप को राक्षसी रूप को बदल ली, एक सुंदर स्त्री है अप्सरा के समान स्त्री रूप को धारण करके रामचंद्र जी के सामने पहुंचकर और अपने अंग भंगी करते हुए अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने लगी कि मैं आपको पति रूप में चाहती हूं। देखा कि उनके पास में सीता भी है, बोले यही तो बाधा डालती है ये जब तक रहेगी। रामचंद्र जी कहे कि मैं तो एक पत्नी व्रत हूँ, मैं एक पत्नी स्वीकार किया हूँ दूसरे नहीं। मेरा छोटे भाई के पास जाओ, लक्ष्मण उधर है उसके पास। लेकिन रामचंद्र कुछ लिखी थी लेकिन उसको समझ लक्ष्मण इसको पढ़े, अब पढ़ के इसको पकड़े और इसको नाक कान खोट के काट के छोड़ दिए इसको, शादी करना चाहते थे। लेकिन रामचंद्र जी ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि भगवान रामचंद्र जान समझ गए थे ये राक्षसी है, ये सच्चे स्त्री नहीं है, सच्चे मानवी नहीं है। लेकिन वही सुपर्णरेखा कृष्ण लीला में क्या बनकर आई? कुब्जा। कुब्जा वही सुपर्णरेखा कृष्ण लीला में कुब्जा बनकर आई। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के सामने भी ऐसा ही, भगवान ने जब उसको जा रहे थे कंस मैंने मथुरा के रास्ता पर कुब्जा देखा, कुब्जा भी इच्छा हो गया इनको प्राप्त करने के लिए। किनको? कृष्ण को। भगवान ने कहा कि थोड़ा हमको चंदन लगा दो, कंस के लिए चंदन बना कर ले जा रहे थे। बड़ा प्रसन्नता से भगवान के रूप देखकर मोहित तो हो गई कौन कुबड़ी, वो भी कुबड़ी थी, उसका पीठ में कुबड़ी थी। और लेकिन भगवान के दोनों को चंदन पहना दिया है, चना भगवान बड़े खुश हो गए, उसको देख कर मुस्कुराने लगे कृष्ण। तो रुक से पैर के ऊपर पैर रख के उसका दोनों हाथ को ऐसे ऊपर खींच दिया, उसका कुबड़ भी सीधा हो गई, सुंदर युवती स्त्री बन गई। तो भगवान को सामने देख कर बोले गए, और भगवान उसके अंग स्पर्श करके ऊपर के तो भगवान ने कपड़ा पकड़ लिया, कहे हमारे घर में चलो, मेरे घर में चलो। तो बोले अरे तुम थोड़ा शांत हो, भाई भी साथ में है कौन, तो बड़ा भाई है साथ में, थोड़ा तुमसे कम तो इज्जत रखो, जाऊंगा जाऊंगा तुम्हारे घर में, लेकिन किसको कंस को बध करके फिर तुम्हारे घर में आऊंगा। तो इसलिए राम और कृष्ण में देखो अंतर है, ये सभी की इच्छा पूर्ण कर देते हैं कौन, श्री कृष्ण। इसलिए लीला पुरुषोत्तम है, रामचंद्र से नहीं कर सकते हैं। दंडकारण्य ऋषियां भी रामचंद्र जी को सौंदर्य को देखकर सोचते थे कि ये रामचंद्र कालिंगन करना भाग रहे थे। ऋषियां कितना सुंदर है, साक्ष्य रस मेरे पास नहीं चलता है, विषय ऐसे ऐसे आगे मेरे को आलिंगन करना है, तुमसे नहीं होगा, वो आलिंगन करोगे अगला लड़ा में। कौन आएगा? कृष्ण आएगा, तुम सब गोपी बनोगे, वहीं आलिंगन करते रहो उसको, मेरे से नहीं। इसलिए दंडकारण्य के ऋषि भी सब क्या बने, गोपियां बने, कृष्ण सब इनका इच्छा पूर्ण कर दी, भगवान का आलिंगन करने की जो इच्छा है इनकी बात है, रामचंद्र नहीं करते सब। तो सीता जी के स्वयंवर हो रहा था उस समय भी, और कई राजकन्याएं सब आए थे उधर इकट्ठी हुए थे हजारों हजार संख्या में, वो कन्याएं सब देखते थे रामचंद्र जी की शोभा को, कहा सीता कितनी भाग्यवती है, हमें यदि परमिशन मिलता हम भी सब इसको शादी कर लेते, किसको, राम को, ये रामचंद्र जी हमारे भी पति बनता तो कितनी अच्छा होता। तो रामचंद्र जानते थे मन में इनकी इच्छा को जानते, बोले कि मेरे द्वारा ये काम नहीं होगा, वो आएंगे अगला युग में, कौन कृष्ण आएंगे है? इसलिए ये जनकवासी मिथिलावासी जो राजकन्या सब थे ये भी सब गोपी बनकर आए हैं, इसलिए कृष्ण की जो लीला में जो रास लीला में ये सब भाग लिए हैं, दंडकारण्य ऋषियाँ, मिथिला की कन्याएं, अप्सराएं, देवता देवकन्या भी सब वो भी रामचंद्र को देखकर मोहित होते थे, इतने सुंदर थे। तो लेकिन ये सबका इच्छा कौन पूर्ण किया, कृष्ण। और बड़ी महाराज की पुत्री भी थी, कौन, रत्ना ने रत्नावली, वो भी वामन देव को वामन अवतार में भी भगवान जब जा रहे थे बड़ी के पास, वामन देव के सौंदर्य को देखकर छोटा बच्चे हैं जा रहे, इतने बोले अरे कितना सुंदर है, मेरे लाला होता मैं इनको गोद में बैठा कर इनको स्तनपान कराते हैं, बड़ा भावना था। जब बड़े राज से बड़े महाराज से सब छीन लिया, कौन, वामन देव सब कुछ ले लिए, तीन छोटे छोटे पैर दिखा रहे थे त्रिविक्रम रूप धारण करके सब ले लिए, कहा कि अरे इसी को मेरा बेटा है, सोचकर मैं दूध पिला दी, ये मेरा दूध तो पिला दी लेकिन दूध में जहर देकर मार डाल के इसको, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इसका दोनों इच्छा को भी पूर्ण कर दिए, बाप ने पुतना बन के आई और दूध भी पिलाए, लेकिन वो जो बीस जहर देने वाला था जहर भी देकर भगवान को पिला रहे थे दूध, भगवान जहर के साथ उसकी प्राण को, लेकिन इसको एक अच्छा पद दे दिए, माँ जसोदा के असिस्टेंट बना दी, कौन कृपाणु हुए, कंगवा दयालु शरण ब्रजे, सुखदेव गोस्वामी ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के दूसरे के पास कौन जाएगा शरण में, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जैसे दयालु, सारे अवतार कितने भी आए गए लेकिन ऐसा दयालु भगवान कहाँ मिलेंगे, इनको छोड़ के दूसरे जगह कहाँ जाऊंगा शरण, पुतना राक्षसी जो मारने के लिए आया जस दूध में ले अपने स्तन में हड़हड़ बीज देकर उसको भी भेज दिया अपनी माँ के पास। तो इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने अभी कह रहे थे पुतना की नाक कान काट के छोड़ दिए, कौन, लक्ष्मण, पुतना बड़ा क्रोधित हो गए और वो चिल्लाती रहती थी, चिल्लाती रहती, उसके पास में और भी अकेले नहीं थे, और भी उसका खरा दूषण आदि हैं और सब राक्षस थे, लगभग 26,000 राक्षस थे, जैसे भागवत में सुखदेव 24,000 दूसरे राक्षस से वहाँ पर, ये सभी खरा दूषण इनके लीडर थे, कबंध आदि ये सब आ गए युद्ध करने, सब आके लेकिन बहुत आसान से भगवान इनको विनाश कर दिया, सबको मार डाले, तो वो हो क्या करेगी सुवर्णखा, सुवर्णखा कुछ उपाय नहीं कर रोते रोते पहुंच गई कहाँ, लंका में रावण के पास, रावण जी को जाकर आपने तो दुख का बोले नाक कान कैसे कटा, वो कारण नहीं पता है मेरा नाक कान किस लिए काटा बोलेगा तो हो सकता रावण डाल डांटेगा क्यों गया तुम उसके पास, तुझे पति में रहता चाहिए, तो मेरे बोला नहीं मैं तुमको शादी करा देता किसी से, तो वो बात नहीं पता है, बोला देखो मैं जा रहा था वहां देखा इतना सुंदरी एक स्त्री है और उसके साथ में बाबा बैठा है जटा जुट धटकर, वो उसका पति है बनने का लायक नहीं है, मेरे को लगता है कि वो सुंदरी जो सीता है उसका तो हस्बैंड बनने के तुम ही केवल क्वालिफाइड हो, इतना सुंदर तक सीता जी का सुंदर जी का वर्णन करते रहे, वर्णन करके तो बात में कहा कि देखो भाई तुम उसको पत्नी और मैं तो उसको उठा के लाना था आदित्य तुम्हारे पास, लेकिन वो मुझे नाक कान काट के छोड़ दिया, तुम्हारी के धीत के लिए मैं जाया काम कर रही थी, मेरे नाक कान काट दिए, तुम किसला बदला लेना चाहिए, मैं तुम्हारे बहन हूँ। रावण तो सुना है वो बात सही है, लेकिन सीता जी के सौंदर्य के बारे में जो व्याख्या सुना तो उसके मन में लस्टी डिजाइन जागृत हो गया, किसकी, रावण पर प्लान बनाया कैसे सीता को हरण करेगा, तो मारी से एक राक्षस था जो सभी योग विद्या से बड़े बहुत पारंगम था, लेकिन इसको पता था कि भगवान रामचंद्र स्वयं भगवान है, तो उसको जो भेजना चाहता था उसको बुलाकर कहा कि तुम जाओ सोने की हरिण गोल्डन डियर बनो, सोना के सोने रंग ऐसे अद्भुत हिरण बनकर जाकर वहाँ नृत्य करो भगवान के सामने, और वो सीता जी को जब वो सब प्लान बनाए सीता निश्चित रूप में वो हिरण को प्राप्त करना चाहे कि रामचंद्र जो तुम्हारे पीछे आएंगे तो मैं हैं तुम फिर लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाना लक्ष्मण भी आ जाएगा तो एकाल एकले सीता रह जाएगा मैं इसको हरण करके लाऊंगा प्लान बना करके। तो मरीज तो पहले मना कर रहा था मैं ये काम नहीं करूंगा वो भगवान है मुझे मार मैं जानता हूँ रामचंद्र भगवान है मेरे को मार डालेंगे। तो बोला कि यदि तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं ही मार डालूंगा अभी तुझे। तो मारीचंद ने सोचा कि अच्छा है कि भगवान के हाथ में मरने से तो वैकुंठ जाऊंगा ये रावण भी मार डालेगा तो क्या होगा मेरा। तो बेचारी राजी हो गई और क्या करेगा ऑप्शनल नहीं ऑप्शन नहीं था ना यदि भगवान जो रावण के बाद नहीं रावण कहेगा अभी तुमको मार डालूंगा इधर ही है। तो फिर वो बाध्य किया आई सोने का हिरण बनकर आप सब जाने कहानी किस प्रकार सत्या सीता जी ने जैसे ही प्लान हुआ था देखे हिरण बहुत सुंदर नृत्य करने लगी सिर हिलाते हुए पास में चले जाते फिर भाग जाते तो सत्या सीता जी आसक्त हो गए कि मुझे ये हिरण चाहिए इसकी मैं पालन पोषण करूंगा पास में रखूंगा आश्रम में। रामचंद्र जी को कहे कि अरे छोड़ दो इसका मोह इसके लेकिन कहने पर भी सीता जी यदि पकड़ के नहीं इसको चाहिए मुझे। रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर गए तो वो तो माया मुर्ग था भागते रहा और भगवान उसके पीछे जब बात में भगवान देही क्रोधी तो तीर छोड़ने लगे वो चिल्लाने क्या बोला लक्ष्मण मेरी रक्षा करो किसकी किसकी टोन में रामचंद्र जी की टोन में। तो सीता जी कहे कि देखो तुम्हारे भाई को विपद आया कुछ बुला रहे लक्ष्मण जाओ। लक्ष्मण जी कहे कि मेरे भाई को कोई विपद में डालने वाला तिरोलोक में कोई नहीं है स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है भगवान है। सीता जी माने नहीं ये तुम्हारे भाई के कौन है जाओ तुम। लक्ष्मण नहीं जाने जब पूरा मना कर दिया आप इसे कोई माया का है राक्षसों की माया होगा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बार बार लक्ष्मण जब ऐसे कहे तो सीता जी ने फिर लक्ष्मण को धिक्कार करने लगे तुम कपटी हो तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई का मृत्यु हो जाए और तुम मुझे अपनी पत्नी बने ऐसे ही कपट ये सुनकर लक्ष्मण जी ने यार सबर नहीं कर पाए आंख से अश्रुओं की धारा बहने लगा क्योंकि लक्ष्मण जी बड़े 12 साल ब्रह्मचारी थे जिन्हें 14 साल ब्रह्मचर्य पालन करके थे कभी भी सीता जी को मुख में नहीं देखे थे इसीलिए उन्होंने इंद्रजीत को मारने के लिए क्वालिफाइड बने थे। इंद्रजीत रावण के पुत्र था इसकी वरदान था कि कोई इसको कौन वध करेगा यदि कोई ब्रह्मचारी 14 साल जो स्त्री मुख को दर्शन नहीं किया होगा जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य पालन किया हुआ था तो राम लक्ष्मण ऐसे कभी जब रहते थे केवल सीता जी के चरण को देखते थे कभी मुख को दर्शन नहीं करते थे। और इस अवस्था में उन्होंने ऐसे ही कह दिए कि तुम्हारा भाई वध होने से तुम मेरे मुझे उपभोग करना चाहते ये बात सुनकर ही लक्ष्मण जी ने सहन नहीं कर पाया आंख से अश्रु बहने लगा कहे कि माता जी तो आप ऐसे ही कहे मुझे भाई ने मुझे दायित्व दिया था आपको सुरक्षा के लिए इसलिए मैं यहाँ पर आपको सुरक्षा के लिए कहीं राक्षस आ जाएगा फिर भी ठीक है मैं तीन रेखा बस तीन रेखा अपने धनुष में डाले कि रेखा को उल्लंघन नहीं करना। यदि वे रामायण में नहीं है पद्म पुराण में आता है कथा है धनुष तीन लक्ष्मण रेखा तीनों अंकित करके कहे कि लक्ष्मण रेखा के नाम आज भी प्रसिद्ध है नासिक में जाओगे बताएंगे ये लक्ष्मण रेखा है क्योंकि ये तीनों रेखा को पार करके नहीं जाना है क्योंकि अग्नि ये तीनों रेखा काटेगी उसमें अग्नि को इनको रखा रखा रखे को बनाकर चले गए हैं लक्ष्मण जी लक्ष्मण देखें देखिए राम भी चले गए लक्ष्मण चले गए रावण आ गया बस सन्यासी वेश धारण करके हैं पहुंच गया भिक्षांग देही भिक्षांग देही भिक्षांग देही भिक्षा मांगने के लिए और क्षेत्रीय राज की जो कन्या वधू होते हैं ये भिक्षा भिक्षा देने के लिए इनके धर्म भिक्षा मांग रहे हैं ब्राह्मण ब्राह्मण वेश में है तो ब्राह्मण था वो विश्रवानंदन है विश्रवानंद के पुत्र लेकिन सन्यासी माया वेश में माया भी सन्यासी बनकर आया सीता जी की जो वो आता था पकड़ने के लिए उपान जो स्पर्श करने आता था वो तो अग्नि रखे के ना पायर देते अग्नि निकलता था उसको भस्म करने के लिए वहाँ आगे वो नहीं बढ़ पाता था तो इसलिए वो बोला कि रेखा के बाहर आकर मुझे भिक्षा दो इसके अंदर नहीं है। तो बोला नहीं मुझे मना है उस रेखा को मैं अतिक्रम नहीं करूंगा ये रखा के इस पार में रहकर भिक्षा दे रहा हूँ। वो बोला ऐसा मैं नहीं क्योंकि ले नहीं पाएगा वो रेखा को उल्लंघन करने के लिए जो आएगा रावण उसको कौन जला देगा अग्नि जला देगी पूरा अग्नि रेखा। लेकिन कहे फिर मैं वापस जा रहा हूँ ब्राह्मण वापस जाएगा बात सुनकर फिर दुखी हो गई। तो सीता जी फिर अनुपाय देखकर बाहर पैर एक पैर अंदर और एक पैर बाहर बढ़ाकर भिक्षा देते ही पकड़ के आराम कर लिया कौन चिल्लाते रही सीता है सीता को अपने उस विमान में बैठकर जा रहा तो बाहर रास्ते में कौन आया जटायु जटायु आ गई गिद्ध है, गिद्ध के जोनी में, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी की महान भक्ति की सेवा की, सीता जी को संरक्षण के लिए युद्ध किया रावण के साथ। रावण बड़ा प्रतापी था, एक इसकी पंख काट दिया, एक पंख काट, फिर भी वो युद्ध करते रहा, उनको मरणासन्न अवस्था में फेंक कर सीता को लेकर चला गया। लेकिन बाद में राम लक्ष्मण आए, सीता को ढूंढे, हाँ सब आप लोग जानते कहानी, मिला नहीं सीता, फिर ढूंढते ढूंढते जटायु को मार्ग में मिला, जटायु सब कथा कहा, जटायु को अंतिम संस्कार भगवान ने किया करके, फिर जैसे ही जटायु कहा था ऐसे आगे ढूंढते रहे, फिर वो इससे से मिले, किससे, हैं सुग्रीव से मिले, सुग्रीव बाड़ी का झगड़ा था, और सुग्रीव ने भी ढूंढ रहा था कहीं शरण मिल जाए, दोनों का एक ही जैसा था, इसका पत्नी को भी छीन लिया, सुग्रीव का पत्नी को ले लिया था कौन, बाड़ी, अब रामचंद्र जी की पत्नी को भी हरण कर लिया, लेकिन ये असली सीता को क्या हरण कर लिया था रावण नहीं, क्योंकि चौरांग गौरांग महाप्रभु जब दक्षिण भारत की गश्त में थे तो एक रामदास एक संत था रामदास, तो उन्होंने महाप्रभु को निमंत्रण किया सन्यासी देखकर अपने आश्रम में, भोजन कुटिया में बुलाया था भोजन के लिए, तो दोपहर में वो ताम्रपर्णी नदी स्नान करके रामचंद्र जी जब पहुंचे उधर उसके आश्रम में भोजन के लिए, वो कुछ कोई कुकिंग वुकिंग कुछ नहीं किया था, बैठकर बैठा था रामचंद्र, महाप्रभु ने कहे कि देखो रामदास आपने मुझे निमंत्रण दिया है और भोजन का समय हो गया, मध्याह्न हो गया, मैं अपने सारे गायत्री आदि सब जब का आ गया तो अभी मुझे भोजन दो, कहाँ है प्रसाद कहाँ, तो कह रहा था कि अभी लक्ष्मण जी ने क्या जंगल में गए हैं, जंगल में कुछ फल जो कुछ कुछ फल मूल लकड़ी लेके आएंगे, फिर सीता जी कुकिंग करेंगे, भगवान को भोग लगेगा, फिर बाद में आपको मिलेंगे, तो बुलाया तो लेकिन भगवान ने क्या रामचंद्र ने चैतन्य महाप्रभु समझ गए इसका तात्पर्य क्या, कि भाव में समझ गए कि पूरा उन्नत स्थिति के भाव में है, इसलिए वो सीता राम इनकी लीलाओं को, लेकिन बड़े दुखी था कौन उस व्यक्ति, जैसे कहेगी तो बहुत समय बैठा उसके बाद कुकिंग करके फिर रामचंद्र खिलाया महाप्रभु को, लेकिन उनको खाने के लिए जो बोला वो खा नहीं रहा था, बड़ा दुखी था, इसको दुख के कारण क्या है पूछे, उन्होंने कहा कि देखो सीता जी को हरण कर लिया कौन, जगत माता सीता, इनको रावण हरण कर लिया, कैसे हुआ, और रोने लगा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन जितने समझाने पर भी महाप्रभु समझाने को शास्त्र प्रमाण चाहिए था इसको कि असली सीता को रावण नहीं लिया, इसलिए महाप्रभु आगे गए, आगे बढ़ते बढ़ते फिर देखे कि वो जगह नाम क्या आदि के सब मंदिर है वो त्रिवेंद्रम के आसपास में, उस एरिया में जाते तो वहाँ पर उनको महाप्रभु को मिला, क्या वहाँ पर ब्रह्म संहिता के मिला था, वहाँ पर देखिए साधु लोग बैठकर अग्निपुराण की चर्चा कर रहे थे, अग्निपुराण में ये प्रसंग आ गया कि अग्निदेव ने किस प्रकार मूल सीता को, क्योंकि लक्ष्मण जी ने इनको रक्षक बनाकर गया था, मूल सीता को अग्नि ने छुपा लिया और नकली सीता एक दे दिया इसको, माया सीता को दे दिया था ऊपर, तो माया सीता को लेकर गया था कौन रावण, इसलिए जब अग्नि परीक्षा रावण की बद्ध होने के बाद जो फिर अग्नि परीक्षा हुआ तो उस समय असली सीता फिर आए थे, अग्नि ने असली सीता को फिर रामचंद्र जी को अर्पण किया था, तो लक्ष्मण जी ने अग्नि को रक्षक बनाकर गए थे, तो वो अग्नि पुराण से लाकर इनको दिखाए महाप्रभु ने, फिर वहां जो वापस आए फिर ब्राह्मण के पास, वो पेज को पुराण में जो पेज में लिखा गया था उस पेज को बोले कि आप लोग मुझे पेज दे दो, वो बोले पेज में कैसे दे देंगे हम पढ़ेंगे, अगर नित्य पढ़ा जा रहा है, तो महाप्रभु ने अपने हस्त लिखे, बोले कि दूसरा में उस पेज को स्वयं हाथ में लिखे कौन महाप्रभु, महाप्रभु की हस्त लिखी देख कर वो तो बोला ये तो टाइप से भी और सुंदर दिख रहा है, भगवान के हस्त लिखी है, वो राजी हो गए देने के लिए, फिर महाप्रभु लेकिन ओरिजिनल पेज को महाप्रभु ले आए, क्योंकि आपने हस्त लिखे देने से हो सकता है ब्राह्मण मानेगा नहीं, तो पुराण के पेज लेकर आए और उसको दिखाए उस ब्राह्मण को, कोई के देखो ये प्रमाण है अग्नि पुराण में कि रावण ने असली सीता को हरण नहीं किया, वो माया से तो नकली सीता को लेकर गया था, इसलिए तुम दुख मत हो, दुखी मत हो, प्रसाद खाओ, इसको शांत कराए, फिर ब्राह्मण को प्रसाद खिलाए कौन, उस दिन अच्छा से और भी कुकिंग किया, महाप्रभु को भी खिलाया स्वयं खाया, इस प्रकार महाप्रभु ने प्रमाणित किए कि असली सीता को रावण हरण नहीं किया, माया सीता को ले गया था, जो भी हो लेकिन फिर आगे बढ़ते रहा, सुग्रीव के साथ मित्रता हुआ है और बाली की वध किए रामचंद्र की, बाली की बाली को कपट से वध करना पड़ा है, सप्त सा बाली को वरदान था कि कोई सामने आएगा बाड़ी के सामने युद्ध करने के लिए है, जो युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा शक्ति अपने आप घट जाएगा, बाड़ी के पास आ जाएगा। इसलिए कोई भी योद्धा उसके सामने युद्ध नहीं कर सकता था। ओ क्या करेगा अभी मैंने, इसलिए रामचंद्र जानते कि, और सुग्रीव भी विश्वास नहीं हो रहा था रामचंद्र जी ने मा इसको वध कर पाएंगे कि नहीं, किसको, बाली को, जिस बाली ने रावण को ऐसे ही काक के अंदर ऐसे जाकर दिया था। बाली इतना पता भी था है? सूर्य के पुत्र तो सूर्य को तर्पण दे रहा था, अपने पिताजी सूर्य पुत्र है दोनों हैं, कौन ये सूर्य पुत्र और वो इंद्र के पुत्र सुग्रीव, बाली सुग्रीव, क्योंकि अहल्या के सौंदर्य को देखकर ये लोग ने जो उनके साथ संभोग किया था अहल्या के साथ, तो इनके दो पुत्र अहल्या से हुए थे बाली सुग्रीव हैं। एक दिन गौतम ऋषि कहे कि देखिए कि दोनों पुत्र मेरा है कि और किसके, में डाउट हुआ कि आप दोनों यदि मेरे पुत्र हो गए तो समुद्र में स्नान करने से फेंक दिए नहीं, बोले कि जाओ यदि मेरे पुत्र हो गए तो फिर जैसे मनुष्य का शरीर, जैसे सुंदर शरीर से फिर वापस आओगे, यदि और किसके पुत्र हो गए तो बंदर का मुख लेके आओगे। तो दोनों बंदर की मुख लेकर आए, क्योंकि थे नहीं गौतम ऋषि के पुत्र, थे एक था इंद्र का, दूसरा था सूर्य का। तो सूर्य पुत्र था, सूर्य को तर्पण कर रहा था, वो ऊपर से कौन रावण जा रहा था, छाया पड़ा था, तो उसको पकड़ के ऐसे हाथ बढ़ाए पकड़ के लाकर पहले यहाँ रख दिया, कहाँ काक के अंदर रावण को रख के तर्पण किया। बाप ने इसको पकड़ा, इसको निकाला, इसको बोला कि बदमाश पता नहीं मैं मेरे इष्ट मेल है तर्पण करा, तुम इधर मेरे रास्ते में जा रहा था, उसके पुत्र को बुलाया अंगद, इसको लेके सूली चढ़ा दे। इतनी प्रतापी था कौन, बाली है, रावण जिसके सामने कुछ भी नहीं था। तो इसलिए अंगद जब गया था लंका में, रावण को बोला था, बोला तुम ये पहचानता, तुम कौन है, मेरे को पहचानता है, पहचानता मेरे को, तुझे मैं सूली काट छोड़ दिया था उस दिन। लेकिन उस बाली के साथ में युद्ध करना भगवान, तो इसलिए सुग्रीव कहा कि देखो आप जो बाली को वध करना चाहे बाली को वध करोगे, मैं कैसे विश्वास करूंगा, बाली इतनी प्रतापी है, तीनों लोक में कोई योद्धा नहीं उसके साथ, यदि सात सप्तताल ऐसे नहीं हुए, एक पहले तो ये राक्षसी का पिंजरा पड़ाता है, कौन सा राक्षसी था वो, विशाल राक्षस है, तो उसके पिंजरा को उठा तो बहुत आसान से फेंक दिए धनुष के एक कोने में उठा के। इसकी बात तो कहें सप्तताल, ये ताल वृक्ष को एक ही तीर में जो विद्ध करेगा सप्तताल को, है सात ताल वृक्ष विशाल है, एक ही तीर में जो सात वृक्ष को भेद कर देगा तभी वो बाली को मार सकेगा, तब तो आसान से भेद कर दिए। सप्तताल तब से तृतीया युग से था, गौरांग महापुरुष दक्षिण भारत की गश्त में थे, सन्यासी के रूप में जो भ्रमण कर रहे थे, वो सप्तताल को जाकर देखकर बड़े आश्चर्य से जाकर इनको आलिंगन किए, आलिंगन करते ही एक के बाद अंतर्ध्यान हो गए, जो लोग देख रहे थे बोले कि अरे यही तो लग रहा है कि साक्षात रामचंद्र है, क्योंकि ये सप्तताल तृतीया युग से यहाँ पर सात ताल वृक्ष थे, लेकिन ये सन्यासी आकर इनको आलिंगन करते ही ये सब अंतर्ध्यान हो गए, चले गए, सब दूर से प्रणाम करते रहे, ये व्यक्ति कौन है, ऐसा अभी नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भेज दिए ऊपर, कहाँ भगत धाम भेज दिए, सप्तताल सात ताल वृक्ष थे, तो सप्तताल विद्ध की विश्वास हुआ, फिर भी छुप कर रामचंद्र ने फिर भी कहे कि देखो उसका बड़ी का सामने जब सामना सामनी होगी युद्ध नहीं करना, छुप के रहना, क्योंकि बड़ी का आप सामना होते ही आपका आधा शक्ति उसके पास चला जाएगा, बड़ी के पास चलते, भगवान ने जानते थे उसको, बड़ी को वध किए, बाली ने बड़ा दुखी हुआ, उसकी पत्नी बोलते थी कि तारा ये भगवान है उनके साथ युद्ध करने मत जाओ, जो भी भक्त था, लेकिन उन्होंने कहा वो क्षत्रिय राजा है, भगवान है तो पक्षपात नहीं करेंगे और न्याय नहीं करेंगे युद्ध में, क्षत्रिय नीति पालन करेंगे, लेकिन भगवान क्षत्रिय नीति पालन नहीं किए, छुप कर मारे इसको, हैं, इसलिए पूछा आपने ऐसा क्यों कहा, जब बड़ी मर रहा तो पूछा राम ने आपने ऐसे क्यों किए, ये अन्याय कैसे किए प्रभु, मैं राक्षस नहीं हूं, हैं, मैं किसी तामर भाई का भाई झगड़ा था, आप इसमें क्यों पक्षपात करके मुझे मार रहे हैं, सही फिर क्षत्रिय नीति को उल्लंघन करके। भगवान ने इसको कहे कि धर्म नीति, ये जो मनुष्य, ये जो नीति मनुशास्त्र, ये पशुओं की तरफ नहीं चलता, तुम एक बंदर है तो मनुष्य नहीं हो, इसलिए पशुओं के पास में धर्म नीति नहीं चलता है, इसके अलावा तुमने अधर्म के मार्ग पर हो, दूसरे के पत्नी को हरण करके रखा, जैसे भगवान ने इसको जवाब दिया, लेकिन फिर भी कहे कि ठीक है तुम इसकी बदला अवश्य तुमको फिर सुजोग दिया जाएगा। इसलिए कोई कहा था कि जो भगवान को अंतिम में जो इनके पैर में तीर लगाया था कौन था, वो था भगवान जो अंतिम लड़ा को स्मरण कर रहे थे कृष्ण की लड़ा को द्वारा मैंने प्रभास क्षेत्र में, वही बाली ही बना जरा सबर बनकर फिर भगवान ने जानते हुए उसके मैंने सुजोग दी तीर मारा, भगवान के पैर में छुप कर मारा था तीर, हिरण के कान सूझ कर भगवान के पैर को मारा था तीर, भगवान ने उसको माध्यम बनाए अपने लड़ा को स्मरण करने के लिए। तो इस प्रकार सुग्रीव के साथ मित्रता करके फिर वानर सेना लेकर हनुमान जी के साथ विशेष मित्रता हुआ। हनुमान जी ने अपना पहले भूल गए थे, हनुमान जी तो पवन पुत्र थे, उनके वरदान था कि किसी भी राक्षस, सारे देवता लोगों ने उनको वरदान दिया था किसी के अस्त्र में मरेगा नहीं, कोई देवता हमारा वरदान दिए थे, लेकिन हनुमान जी ने भूल गए थे अपने वरदान को सुबह, क्योंकि पहले जो वरदान मिल गया था तो बड़ा तंग करते थे, पहले तो बच्चे थे तो सब सूर्य को खाने के लिए गए थे, इसलिए तो इंद्र ने वज्र मारा था, लेकिन वज्र जो मारे बहुत बेहोश हो गए थे, पवन देव जब स्ट्राइक करने लगे सारे देवता लोग ने फिर एकत्रित होकर फिर हनुमान जी को चिरंजीवी और अमर बना शक्ति बनाए थे। हनुमान जी को पता चल गया था कि मैं बहुत शक्तिशाली, मेरे को कोई मार नहीं सकता है, तो ऋषि को तंग करने लगे, सभी आश्रम में जाकर सब सब तोड़ताड़ देते थे, तो इसलिए ऋषि लोग ने सब अभिशाप दिया कि तुम सब भूल जाओ, तुम्हारे को तुमको जो 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 शक्ति है तुम इसके बारे में सारे विस्मरण हो जाए, समय आने पर जो भगवान की सेवा में लगेगा तभी तुमको स्मरण आएगा। इसलिए हनुमान जी फिर रामचंद्र जी की मिलन हुआ और उसको स्मरण आ गया, अभी इसकी जो योग शक्ति सब मैंने, तो हनुमान जी ने जब पहुँच गए सेतुबंध मैंने रामेश्वरम के, रामेश्वरम में पहुँच गए और पता लगा कि लंका में कौन है, सीता को लेकर लंका में रखा, लंका कौन जाएगा खबर लेने के लिए, तो हनुमान जी ने एक लंप मारे, कहाँ से, एक ही छलांग में, कितने शक्ति है देखो, रामेश्वर में जाकर पहुँच गए कहाँ, श्रीलंका में, एक ही छलांग, पवन पुत्र वो जगह आज भी है, रामेश्वर में जाओ देखा है यहीं से हनुमान जी ने छलांग मारा था, पहाड़ है थोड़ा है, तो पहुँच कर जो अशोक वन में सीता जी का साक्षात्कार किए, रामचंद्र जी का मुद्रिका लेकर गया था कौन, हनुमान जी, सीता जी को मुद्रिका दिया, नहीं सॉरी किसका मुद्रिका दिया, हाँ उनको विश्वास हुआ अशोक वन में, तो फिर लेकिन राम हनुमान बोलते मेरे कान में बैठो मैं ले जाता हूँ, अब सीता जी कह के नहीं ये नहीं होगा, मैं किसी परा पुरुष को स्पर्श नहीं करूँगा, लेकिन तुम ले सकते हो लेकिन भगवान की कृति भी कुछ होना चाहिए, ये राक्षस का वध होना चाहिए, किसका, रावण का, अब तो सीता जी का साथ बातचीत हो रहा था तो बंदर को पकड़ लिया, देखिए बंदर कहाँ से आगे बातचीत करने लगा इनके साथ, सब लोग कोई तो आता था साधारण राक्षस को तो कुछ नहीं कर पाए, इसको सब एक एक थप्पड़ में सब बात कर रहे भाग जा रहे हैं, और सारे रावण का जितने सब गार्डन था सब नष्ट कर दिया, सारे पेड़ से दूसरे पेड़ में छिलक मारते मारते हनुमान जी सारे फल वृक्ष बागान सब नष्ट कर दिए, बोला अरे उद्धत बंदर कहाँ से, पकड़ो इसको सारे चारों साइड में, लेकिन एक राक्षस का कोई 10-15 लोग का भी हिम्मत नहीं था इसको पकड़ने का, इसलिए रावण ने अपने पुत्र को फिर भेजा है, इंद्रजीत को भेजा कुंभकर्ण है, सब बड़ा बड़ा राक्षस आए, फिर उस चारों साइड में घेराव करके मुश्किल से पकड़े, किसको, सीता जी बड़े दुखी हुए इसको पकड़ लिए, लेके रावण के साथ पहुँचे, रावण तो बहुत उच्च आसन में बैठा था सिंहासन में, हनुमान जी को नीचे बैठे थे, हनुमान जी ने कुछ कम नहीं था अपने पुछ को ऐसे घुमाए घुमाए और रावण से उच्च आसन में बैठ गए, अरे ये बंधन अपने पुछ में ही आसन बना लिया, इतना आसन रावण के ऊपर है, रावण बड़ा उद्धत है, इसको बांधो इसको इसके पुछ में, लंबा पुछ है इसमें कपड़ा है क्या लगा दो, आग लगा दो, आग में जल के मर जाइए, कपड़ा लगा दे बस आग लगा दे, तो हनुमान जी ने और छिलांग लगाए पूरा लंका को, सब में सभी जगह अलग लगा आग लगा दिए पूरे रावणपुरी में, पूरा लंका को ध्वंस कर दिए, स्वर्ण लंका को भस्म कर दिए, छिलांग करी बस बाप में हस आग पहुँच गए समुद्र से, फिर छिलांग मार के आ गए सर बस है। तो हनुमान जी जो हनुमान जी खबर दिए रामचंद्र जी को, फिर रामचंद्र जी ने वानर सेना को बनाए हैं, सभी वानर को इकाठी करें, विभीषण बाद में आए हैं, यहाँ से सुग्रीव गांव जाकर जो प्रतीक्षा कर रहे थे रामचंद्र ने वहाँ सेतुबंध में युग धर्म को पालन करने के लिए यज्ञ किए, रामचंद्र ने यज्ञ करके, यज्ञ कौन करेगा, ब्रह्मा जी को इन्वाइट किया गया यज्ञ करने के लिए, ब्रह्मा जी कहे कि नहीं ब्राह्मण है अभी मृत्यु लोक में है, और रावण को बोला वही यज्ञ करेगा, भगवान कहे उसी को मारने के लिए जा रहा हूँ, उसको कैसे बुलाना चाहिए, नहीं से बोला नहीं आएगा तो मैं आऊँगा, तो रावण जी को जब वो इन्वाइट देता आ गया वो यज्ञ करने, आकर यज्ञ किया और वही स्वयं यज्ञ मंत्र उच्चारण करता कि रावण को बध करने के लिए यज्ञ हो रहा है, मरेगा ब्राह्मण इसमें हैं। रावण वध के लिए यज्ञ हो रहा है उसको पता है, लेकिन उसे इन्वाइट किया गया तो आया, आगे यज्ञ किया, यज्ञ संपन्न हुआ, अभी युद्ध रेडी है। विभीषण ने बहुत समझाया, किसको? मंदोदरी ने भी समझाया, रावण को समझाया विभीषण की, भाई ये स्वयं भगवान है, रघु कुल तिलक रामचंद्र राम लक्ष्मण दोनों ही, इनके साथ युद्ध नहीं करना, तुम सीता को वापस दे दो, प्रभु है, प्रणाम कर लो, वो तुमको माफ कर देंगे, तुम्हारे अपराध मार्जन कर देंगे, दोष नहीं लेंगे। रावण जी ने सब जानता था, वो भी जानता था कि मैं पूर्व जन्म में कौन था वो जानता था कि जय विजय थे वो बहुत, जब किंतु रामायण में वर्णन आते कि जब अंतिम दिन जब रावण आता है युद्ध करने के लिए, मंदोदरी बहुत रोती है, तो रावण ने अपने पूर्व जन्म कहकर सुना था, किसको? मंदोदरी को। हाँ, कहते तुम चिंता मत करो, इन्हीं के हाथ में मरने से फिर मेरे मुक्ति होगा। हाँ? पता था इसको, ब्रह्मज्ञानी था रावण, लेकिन फिर भी क्या करेगा, तो अपने स्वभाव जो अभिनय करना शुरू कर रहा था। और अंत में नहीं तो भगवान, इसलिए इसके बीच में विभीषण, आपने जो रावण उनकी बात नहीं सुना, विभीषण और दिन के तीनों विशेष मित्रों को लेकर शरणागत होने के लिए आया, आकाश मार्ग में आ रहे थे, देखकर आकाश मार्ग से ही भगवान के शरण के लिए प्रार्थना कर रहे थे। भगवान ने पूछे सबको, क्या करना है हनुमान है? और सुग्रीव आदि सबको उपस्थित कहे, जाम्बवान मंत्री था, बोले क्या करना है अभी बोलो, सभी लोग मना करते, बोले इनको विश्वास मत करो, किनको? राक्षस है, रावण का छोटा भाई यही है विभीषण, इनके पास में बहुत कपट माया होता है, इनको नहीं विश्वास करना, इनको शरण नहीं देना। लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने कहे कि नहीं, जो एक बार भी मेरी शरण में आता है, उस श्लोक में भी याद नहीं, तवई वास्मि इति इति, जो केवल हे प्रभु मैं आपका ही हूं कहकर मेरी शरण में यदि आ जाता है किसी भी रूप से, तो फिर मैं इसको त्याग नहीं सकता हूं, ये मेरी शरण में, मेरी शरण मांग रहे हैं, मैं कैसे मना कर सकता हूं। तो जो भगवान ने आदेश, ठीक है शरण में लेने के लिए सम्मति दे दी, तुरंत आए, आकर चरण में प्रणाम किए। भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही इनको राजपाट बना, मेरे विभीषण को राजपाट बांध के कहे कि आज से तुम लंका के सम्राट, तुमको लंका के राजा बना दिया। ये बोले ये क्या कर रहे तुम, अभी विभीषण को लंका का राजा बना दिए, अभी रावण यदि आएगी आपके शरण में आएगा क्या करोगे? रावण भी आएगी दंडवत लगा देगा, कहेगा मैं आपके शरण में हूं, तो क्या करोगे? अभी विभीषण को लंकाधीश बना दिए। चिंता नहीं है, कौशल नगरी अयोध्या में दे दूंगा इसको, किसको? रावण। तो भगवान ऐसे ही कोई भी शरण में आता है उसको त्यागते नहीं है, शरण में आए तो फिर उनको रखे। विभीषण की मंत्रणा, विभीषण सब भेद जानता था राक्षसों कैसे वध करना, विभीषण से सलाह लेकर फिर राक्षसों को वध किया है। विशेष रूप लक्ष्मण का, लक्ष्मण और हनुमान ये दोनों विशेष भूमिका निभाया है। जाम्बवान आदि जो अपराध है सैनिक थे, जाम्बवान भी कुछ कम नहीं है, 28 दिन युद्ध किया था लक्ष्मण के साथ भी है, नहीं भगवान श्री कृष्ण के साथ भी है, ये जाम्बवती को भगवान प्राप्त किए थे। जाम्बवान दोनों की तृतीया में भी था, द्वापर में भी है। तो इसलिए अयोध्य में सारे राक्षस एक एक करके मरे, अंत में रावण की जो भाई जो रावण के पुत्र भी इंद्रजीत का वध हुआ, लक्ष्मण जी ने वध किया इसको, और तभी क्रोधित होकर आया कौन? रावण आकर ब्रह्मास्त्र निक्षेप किया, किनके ऊपर? लक्ष्मण के ऊपर पूर्ण शक्ति। लक्ष्मण जी ने थोड़ा मूर्छित होकर गिर पड़े थे, हनुमान जी ने गए फिर विश्व लेकरणी लाने कहाँ से, कंधमार्दन पर्वत से, उसे बहुत सब कथा आपको पता है। फिर अंत में लक्ष्मण फिर होश में आए, फिर युद्ध हुआ, रावण को कौन वध किया? भगवान रामचंद्र जी ने रावण को वध किए, इसके 10 सिर थे, 10 सिर को काटकर 10 दिग में दिग्पालों को उपहार दे दिए, सीता जी को अशोक वन से मुक्त करके। फिर रावण की जो विमान था, कौन सा विमान था? पुष्क विमान, पुष्क विमान में बैठे, पुष्क विमान आजकल वैज्ञानिक लोग ऐसे विमान तैयार कर पाएगा, अभी तैयार कर कई विमान हुआ, लेकिन वो विमान ऐसा ही है कि जितने भी लोग बैठेंगे उसके अंदर फिर भी एक सीट खाली रहेगा, हमेशा एक सीट खाली रहेगा। वो विमान अपने आप अपना इच्छा से एक्सपांड होते रहेगा, अपने बढ़ते रहेगा, जितने भी करोड़ों लोग भी अंदर चला गए फिर भी एक सीट और एक लोग के लिए खाली रहेगा। आजकल कोई वैज्ञानिक ऐसा विमान बनाएगा? जो आए थे सारे बंदर सेना उसमें सब घुस गए थे, करोड़ों लोग थे उसके अंदर घुस गए, बंदर को भी चांस हो गया विमान में आने के लिए, बड़ा खुश है। आज तक कोई बम्बारे मैंने आज तक कोई बंदर नहीं गया, भगवान ने लेके आए थे लंका से बंदरों को, विमान में बैठा करें एरोप्लेन में बैठा करें अयोध्या लाए हैं, बंदरों को बहुत कष्ट सहे भगवान के लिए, इसलिए बंदर बड़े प्रिय है राम को भी और कृष्ण को भी। बंदरों की जो नुकसान पहुँचाओगे भगवान नाराज हो जाते हैं, है ना। वृंदावन के बंदर देखते कितने इंटेलिजेंट, आप कहते भी जाते चश्मा है तो बहुत आसान से निकल लेगा आपके साथ, आपको पता ही नहीं चलेगा, खाना खिलाओ फिर देगा वापस। तो इसलिए भगवान ने अपने हाथ से माखन खिलाया बंदर को, चोरी करके कि माखन बंदर को खिला देते, क्योंकि रामलीला में कितने कष्ट सहा, खाए पिए बिना कितने कष्ट रामचंद्र जी के लिए उन्होंने कष्ट निभाया। तो सबको फिर पुष्पक जान में बैठकर सब आए अयोध्या में पधारे, उनको पता चला भरत जी को, जो कि रामचंद्र जी जाने के बाद राज सिंहासन तो नहीं बैठे, और साहब ने गए थे उनको वापस लाने के लिए, रामचंद्र वापस भी नहीं आए, तो इसलिए उनके पादुका माकर लेके आए थे और एकांत में पादुका की पूजा करते थे। कौन सा गांव था वो जहाँ पर भरत जी ने पादुका की पूजा करते थे? नंदीग्राम में, वहाँ बड़ी पूजा करते थे। पता लगा कि रामचंद्र जी पधारे, फिर वो अपने पादुका को लेकर आए, क्योंकि तब तक भगवान रामचंद्र जी नंगे पैर में ही चलते थे, जब से भरत को पादुका दे दिए फिर नंगे पैर में भ्रमण करते थे। कृष्ण भी नंगे पैर में घूमे 11 साल, कहाँ ब्रज में पैर नहीं जूता नहीं पहने हैं कृष्ण, बलराम ग्वाल वाल ये सब गोपियाँ को जूता पहना, आप लोग जूता बिना घूम पाओगे जाके? गिरा जी परिक्रमा जूता के बिना करते तो बहुत परेशान हो जाता है। तो भगवान ने पूरे 11 साल ऐसे ही बिताए नंगे पैर में, रामचंद्र जी ने भी नंगे पैर में घूमते थे जंगल में, इसलिए पादुका लेकर भरत जी ने आए और उनकी माता ने स्वागत किया, अयोध्यावासी सब आ गए हजार हैं, बहुत सुंदर नगरी को सजा गया था। कौन सा दिन भगवान पधारे थे अयोध्या में? हैं दिवाली का दिन। कौन सा दिन रावण को मारे थे? दशहरा का दिन है, रावण पूरी किया जाता है उस दिन, दशहरा के दिन रावण का शरीर बनाकर जलाते हैं लोग, और दिवाली के दिन सारे दीप किस लिए जलाते, क्योंकि उसी दिन अयोध्यावासी भगवान को स्वागत करने के लिए पूरे अयोध्या नगरी को दीप में सजाया था। दीपावली के दिन भगवान अयोध्यापुरी में नगरी में प्रवेश किए, माताएं ने स्वागत किया, पिताजी तो सर देहांत हो गया था दशरथ, लेकिन माताएं ने स्वागत किया और सारे उनके पुरोहित वशिष्ठ आकर फिर रामचंद्र जी को अभिषेक के साथ राज सिंहासन में बैठाए हैं, अयोध्या नरेश के रूप में बैठे। तो उन्होंने फिर कई सालों तक यज्ञ करते रहे, लेकिन राजा के रूप में राम राज्य की राम हैं सुखदेव गोस्वामी की कहते कि नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख सुख भया क्लम मृत्यु मृत्यु अनिच्छताम नास्ति राम राजानी अध्यक्ष जी। जिस राज्य को स्वयं अध्यक्ष भगवान रामचंद्र जी ने विष्णु स्वयं शासन करते थे, उस राज्य के प्रजाओं में ये सब नहीं दिखाई पड़ता था। कौन सा? नाधि अर्थात त्रिताप क्लेश नहीं भोगते थे, आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक क्लेश जनता को नहीं भोगना पड़ता था, बड़े प्रसन्न चित्त में रहते थे। नाधि व्याधि ना किसी प्रकार की रोग व्याधि भी इनको होता था, भय भी मुक्त थे, जरा वृद्धावस्था भी इनको नहीं आता था, गाने किसी प्रकार के सोचने कोई दुश्चिंता किसी प्रजा के मन में नहीं रहता था। मृत्यु अनिच्छता नास्ति, जब तक तो कोई अपनी इच्छा से मृत्यु नहीं चाहता था, सबको इच्छा मृत्यु था, जैसे विष्णुदेव को इच्छा मृत्यु, द्वापर में एक व्यक्ति को था, तृतीय में रामचंद्र जी की राजधानी में सभी को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब तक तो कोई स्वयं इच्छा नहीं करेगा मरने के लिए वो मरता नहीं था, रामचंद्र जी के राज्य में जमराज का अधिकार नहीं था। तो आज वे पॉलिटिकल लीडर कहते आप हमको वोट दो, हम आपको राम राज्य देंगे, ये राम राज्य दे सकते हैं? राम राज्य क्या है इनको पता ही नहीं। राम राज्य में केवल भौतिक दुख सभी प्रकार के प्रसन्न थे जनता, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने स्वयं रात्रि में छद्मवेश में भ्रमण करके पता लगाते थे प्रजाओं से कोई दुखी है ना, कि स्वयं अपने राजवेश को उतार कर साधारण वेश पहनकर तो एक दिन से घूमते घूमते देखे कि एक धोबी अपने पत्नी को डांट रही है, कह के अरे दूसरे के घर में थी कल रात, कहाँ गई थी तू, तो दूसरे पर पुरुष में मति रखता है, अभी मैं ऐसा नहीं हूँ, ये स्त्रैणा नहीं हूँ, कैसे रामचंद्र जैसा हो 14 साल जाकर सीता रहा उसके पास, फिर अपना पत्नी के रूप में ले लिया, रावण के पास था आइए। तो बात को सुनकर तो बड़ा रामचंद्र बड़ा शक लगा है, बोले अरे प्रजा मेरी समालोचना करते हैं, राजा के धर्म है कि प्रजाओं को सुखी करना, मेरी प्रजा मेरी समालोचना करते हैं, तो मैं पत्नी को नहीं, तो तुरंत आकर निर्णय ले ली कि सीता को त्यागने का है। इसलिए रामचंद्र जी ने सीता जी को फिर लक्ष्मण को कहे कि इसको लेकर वाल्मीकि आश्रम में छोड़ के आओ। तो गर्भवती थी कौन? सीता। लेकिन सीता को तो पता नहीं था, सीता तो जंगल में जा रही थी। उसको मैंने रामचंद्र जी पूछे थे दो चार दिन, बोले आपका क्या इच्छा है? उन्होंने कहते कि मैं थोड़ा जंगल की शोभा, पहले जो जंगल में थे कितनी सुंदर शोभा जंगल के हैं, उससे निहारना चाहते। तो वो कहे कि ठीक है लक्ष्मण ले जाओ, जंगल में छोड़ के आ जाओ, वाल्मीकि आश्रम के पास में छोड़ के। लेकिन लक्ष्मण जी ये काम करना नहीं चाहते थे, रामचंद्र भाई के आदेश है। तो इसलिए लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा ली, भविष्य में यदि कभी मैं अवतार लूंगा कभी भी छोटा भाई बन के नहीं आऊंगा, है जो नहीं करना पड़ता वही करना पड़ता है। इसलिए अगले मेरे और नहीं आए, छोटे भाई बनकर नहीं आए हैं, बलराम बनकर आए। बोले अभी तुम्हारा बात कन्हैया नहीं चलेगा, मैं जो बोलूंगा तुमको सुनना पड़ेगा। बहुत परेशान किया मुझे, कहाँ कहाँ बोलते रहा। वो लक्ष्मण बन गया, छोटा भाई बन गया था तो बहुत परेशान किया था, अभी बड़े भाई बन के आया बलराम है। गौर लीला में भी नित्यानंद के रूप में आए, नित्यानंद प्रभु भी सब रामायण की लीला करके दिखाते थे बच्चों को, छोटे बच्चे थे तब भी रामायण की लीला करते थे। तो इसलिए लक्ष्मण जी ने छोड़ के आ गए। तो और वाल्मीकि जी ने इनको हैं फिर सीताजी को लेकर आश्रम में रखे, दोनों पुत्र वहाँ से जन्म हुई। कौन कौन? लव कुश हैं। इतनी प्रतापी बने कि भगवान रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ करते थे उनके घोड़े को बांध लिए, सोचते कि ऋषि बालक है। और वाल्मीकि जी ने उन्हीं को ही आदि को भी वाल्मीकि है, ये वेद पुराण उपनिषद रचना करने का होने का पहले भी ये रचना कर लिए थे। किसका? रामायण, रामायण का है। इसलिए इनको आदि कवि कहते हैं, आदि कवि वाल्मीकि है, आदि कवि व्यासदेव नहीं है, आदि कवि वाल्मीकि। ये रामायण पहले रचना कर चुके थे और रामायण रचना करके ये दोनों को पूरा सिखा दिए थे। ये गाते थे दोनों, कौन? लव कुश, दोनों रामायण गाते थे। तो ही बांध लिए बच्चे, छोटा बच्चा को यज्ञ को बांध लिए, इतने हिम्मत है सारे तीनों लोग में किसके? रामचंद्र जी को, उसको को कौन बांध सकता? कोदंडधारी स्वयं भगवान के, जिसको परशुराम जिनको भय से भाग गए महेंद्रगिरी में तपस्या करने, अरे ये दोनों बच्चे बांध लिए इसको। हनुमान जी घोड़ा रखे थे, हनुमान जी आ गए तो हनुमान जी को बांध लिए, बांध के ले गए सीता जी के सामने। अरे बंदर को देखो माँ, एक बंदर को लाए बांध के क्या है देखो। और सीता जी कहे कि अरे हनुमान, दोनों इतनी पराक्रिय, रामचंद्र जी के पुत्र थे, वो कोई साधारण थे ना क्या? तो बहुत आसान से बहुत रामचंद्र जी के साथ फिर उनके मिलन हुआ। बात है रामचंद्र पहचान गए मेरे पुत्र है, सीता जी को वापस आने के लिए बोले, लेकिन सीता जी राजी नहीं हुए। तो इसके कई पुराने अलग अलग प्रकार के वर्णन है। अभी जाओगे तो कानपुर के पास में है, कौन सा? जहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम था, क्या कहते हैं इसको? बिठूर, बिठूर धाम। बिठूर में वहीं पर वाल्मीकि जी का आश्रम था, गंगा के किनारे। आज भी वाल्मीकि आश्रम है, वहाँ पर भी स्थान है जहाँ पर सीता जी जमीन पर प्रवेश कर गई थी, दोनों पुत्र को समर्पण करके। किनको? वाल्मीकि को। रामायण में जैसे वर्णन आता है देखकर फिर वो वहीं पर, और सीता मैंने जगह अलग वो दूसरे जगह में भी कही जाए कहा जाता है। लेकिन तुरंत में रामचंद्र जी ने अपने दोनों पुत्र को लेकर, रामचंद्र बड़े क्रोधित हो गए, धरती जब सीता जी को आश्रय दिए, दोबारा परीक्षा करना चाहे ना, एक बार परीक्षा तरह रावण जो लंका से आने का टाइम में लोग परीक्षा दिए थे, अग्नि परीक्षा देकर सती के रूप में मैंने प्रमाण दिए थे, लेकिन दोबारा फिर धोबी कहने पर त्याग दिए। फिर अयोध्या में लाने के लिए दोबारा परीक्षा करने के लिए तो कहे थे रामचंद्र दोबारा परीक्षा लेने के लिए, तो सीता जी कहे कि नहीं, हैं कहे कि माँ तुम मुझे आश्रय दो, धरती माता पर आश्रय दी। सीता जी धरती के अंदर चले गए, बंद हो गया। रामचंद्र जी क्रोधित होकर कहते थे कि तुमको मैं समाप्त कर दूंगा, कठिन मत हो, सीता को वापस दो। लेकिन सब फिर मुनि ऋषि लोग ने समझाए, रामचंद्र जी शांत हुए, लेकिन दोनों पुत्र को लेकर साथ में रहे। अरे ये हजारों सीता का मूर्ति बना बना के सब वो यज्ञ करते रहे, कौन? एक एक सोने का सीता बनाते थे राम पर, उनके बाजू में सीमा सोनो सीता को रखकर यज्ञ करते थे, हैं। लेकिन भगवान स्वयं रामचंद्र जी को हस्त स्पर्श करके सोनो सीता सब जीवित हो जाते थे। एक दिन रामचंद्र जी साइड में जा रहे थे उसके यज्ञ करके, कई दिन के बाद, कई हजार साल बाद, ये गोदान में जो एक एक सोनो सीता को लेकर सब रख देते थे गोदान में, तो हजार हजार गोर सोनो सीता सब बैठे हुए थे यज्ञ के बाद, फिर दूसरा सीता बैठाते थे। तो वो सब जीवदान प्राप्त कर गए थे, रामचंद्र जा रहे थे, सब भाग के आकर घेरो करने लगे, बोले आप, हम सभी तुम्हारा पत्नी है, तुम हमको हैं, बैठा बैठा के यज्ञ किया। तो इतना हजारों आक्रमण कर सीता जी, रामचंद्र बोले अरे शांत तो क्या हुआ, बोले ठीक है ये कृष्ण आएंगे तुम्हारा इच्छा पूर्ण होगा। फिर ये सौ भी सौ गोपी बनकर आए हैं, ये जो स्वर्ण सीता जो बैठे हुए थे रामचंद्र यज्ञों में, जो बैठा बैठा के यज्ञ किए थे। तो इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है, भगवान श्री कृष्ण, सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन अतिष्ठन, इसलिए रामचंद्र जी की रास विशेष रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक आदर्श जीवन उन्होंने सिखाया इनको आचरण करने के लिए। भगवान लीला पुरुषोत्तम है, इनको आप अनुसरण नहीं, वो अनुकरण नहीं कर पाओगे। भगवान ने जो कहा और श्री कृष्ण जो कहें उनको अनुकरण करने के लिए नहीं, उन्होंने भगवद्गीता में जो कहा है उसको फॉलो करो। हैं, रामचंद्र जी ने जो जिस आचरण करके सिखाया मनुष्य इसके इस आचरण करना चाहिए, लेकिन राम कृष्ण के आचरण आप नहीं कर पाओगे। कृष्ण कुछ भी किए, गोवर्धन भी उठाए, केवल रास नहीं रचाए, गोवर्धन को भी 7 साल उम्र में गोवर्धन को उठाकर दिखाए। तो आजकल के जो तथाकथित भगवान कोई बन जाता है वो खाली रास रचाना चाहता है, लेकिन गोवर्धन धारण करना नहीं। तो इसलिए इस प्रकार रामचंद्र जी ने जब अंत में जब लीला को स्मरण किए, सारे अयोध्यावासियों को साथ में लेकर गए, कहाँ एक व्यक्ति को नहीं लिए, वो रोते रहा, कौन, हनुमान जी को नहीं लिए। हनुमान जी कहेंगे तुम यहीं पर रहकर प्रचार करो, तुम मेरी सबसे प्रेमी भक्त हो, जो मुझे सबसे प्रिय होता है, कौन प्रिय होता है, जो मेरी प्रचार करता है। गीता में भगवान यही कहे, जो गीता का प्रचार करता है वो सबसे मेरी प्रिय है। पहले हनुमान तुम प्रचार करते रहो, सबको राम नाम रटाओ, यही तुम्हारा काम है, और सारे अयोध्यावासी को लेकर। हनुमान जी रोते रहे, प्रभु मुझे रे, सही तो हनुमान नित्य भी वहाँ विराजमान है, लेकिन एक उदाहरण देने के लिए भगवान ने सभी अयोध्यावासी को साथ में लेकर धाम में पधारे, साकेत धाम में चले गए। तो आप भी यदि अयोध्यावासी होते उस समय, यहाँ नहीं होते, साकेत में होते, ठीक है। संक्षेप में हरे कृष्ण, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री राधा राधा राधिका रमण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि।